जरा सोचो तो मसूद, एक दिन फरीदा अचानक से दरवाजे से बाहर आती है और सड़क क्रॉस करते हुए गाड़ी से उसका एक्सीडेंट हो जाता है।
अमित, तुम्हारी क्या बात है, फरीदा को मार डालें जो कि सरमद खानदान की एक इकलौती बहू बन गई है।
नहीं, वो एक्सीडेंट इतना खतरनाक भी नहीं होगा, बस इतना कि उसका बच्चा मर जाए और फरीदा जो कि उम्मीद से वो ना उम्मीद हो जाए। अभी वो तुम्हारे माँ बाप को पसंद आ रही है तो वो सिर्फ उस बच्चे की वजह से है, और जब वो बच्चा ही नहीं रहेगा वो तुम्हारे माँ बाप को कैसे पसंद आएगी। खत्म कर दो उस बच्चे को, उसका नाम शाहीन है, उसको लोग शाहीन ड्राइवर कहते हैं। मैं खुद इससे बात करूंगा मसूद, पैसे थोड़े ज्यादा लेगा लेकिन काम बहुत तरीके से करेगा, फरीदा के ना मरने की शर्त पर।
ये बातें नहीं करो अमित, डर लग रहा है मुझे।
डरू नहीं मसूद, तुम्हारा तो वहां पे नामो निशान भी नहीं होगा। फरीदा वो घर से बाहर हुआ, उससे पहले एक आवाज मुझे दे दे, मैं सड़क के उस पार खड़ा हुआ होगा, और फिर उसके बाद बहाने से फरीदा को सड़क क्रॉस कराना, और उसके बाद सब कुछ मुझ पर और शाहीन पर छोड़ देना। जितनी जल्दी हो सके बेहतर है मसूद, आज कल से बेहतर है और कल परसों से बेहतर है। फिर अपने घर से नहीं निकाल सकोगे उसे, देर करोगे तो वो अपने पाँव जमा लेगी मसूद, फिर तुम्हारी नस्ल इसी औरत से चलेगी मसूद, ये नहीं होना चाहिए।
आपके पास उनका पता है?
किसका?
मोहतरमा शाहिन साहिबा का।
हाँ, उनका एक पता यहाँ लिखा हुआ तो है, लेकिन पता नहीं कि वो अब यहाँ है भी या नहीं।
जी, वो पता मुझे दे दें।
देखें, ये जगह मुल्ला सदरा है, मैं कहाँ ले चलूँ आपको?
कसरे दस्ते थोड़ा सा आगे, ये वही है जो तुमने कहा था। नरसिस,
क्या?
मैं ये सोच रहा था कि मैं इस घर की वजह से अजाब में था, लेकिन तुम सही कह रही थी, मेरा असल अजाब मसूद की माँ थी।
अभी किसी को कुछ नहीं पता,
खुदा करे वो जिंदा हो अभी, तो मैं उससे अपना गुनाह तो माफ करवा लूं।
खुदा पर यकीन रखो, दुआ करो।
सलाम।
सलाम
सलाम। शाहीन साहिबा का घर यही है
जी?
वो मौजूद हैं घर पे?
जी हाँ। आप कौन जनाबे अली?
मैं रजा सरमद हूँ, और ये मेरी बेगम।
हाजी रजा, मैं मजीद हूँ, हाजी अली अकबर का बेटा।
कैसे हो मेरी बेटी, कितने बड़े हो गए, जवान हो गए माशाल्लाह, देख रही हो?
आइए अंदर आइए ना आप लोग।
चलो अंदर चलो।
शुक्रिया। आइए आ जाए, अंदर आए, बहुत खुशामदीद, आ जाए इस तरफ आ जाए, इस कमरे में आ जाए, तशरीफ रखें। हमें उम्मीद नहीं थी कि आप दोबारा मिलेंगे।
मेरी तरफ से क्यों?
जी, मामा ने आपको बहुत तलाश किया लेकिन आप हमें कहीं नहीं मिले। मामा आपके पुराने इलाके में भी गईं और वहां आपका बहुत पूछा, बहुत तलाश किया, लेकिन आपके इलाके में आपके बारे में किसी को कुछ पता ही नहीं था।
तुम्हारी माँ मुझे क्यों तलाश कर रही थी?
इस बात का तो मुझे कुछ भी नहीं पता, सिर्फ ये कह रही थी कि वो आपसे कुछ कहना चाहती हैं।
इस तरह क्यों कह रहे हो, खुदा ना करे। बेटा वो जिंदा है, उनका इंतकाल तो नहीं हुआ या कहीं?
हयात हैं अल्हम्दुलिल्लाह।
मैं जब की बात कर रहा हूँ जब वो आपको तलाश करने के लिए आपके इलाके में गई थी।
अभी हैं क्या?
जी हैं।
मैं उनसे मिलना चाहता हूँ।
जी बिल्कुल, वो तो कब से आपसे मिलने के लिए बेताब हैं। मैं अभी लेकर आता हूँ। लेकिन मेरी माँ नाबीना हो गई हैं, अगर वो आपको ना पहचाने तो नाराज ना होइएगा। मामा, मेहमान आए हैं।
कौन है?
अंदाजा लगाओ।
कौन है बता दो ना।
आप सोचें तो खुश हो जाएंगी।
खुश हो जाऊंगी? बताओ ना कौन आया है।
आगा रजा।
आगा रजा? कौन आगा रजा?
आगा रजा सरमत।
तुम्हें कहाँ मिले? कहाँ तलाश किया तुमने?
मैंने तलाश नहीं किया, वो खुद आए हैं हमें तलाश करते हुए।
सलाम शाहीन बीबी।
सलाम। आप खुद आए हैं?
हाँ।
नरजीत साहिबा आप भी मौजूद हैं?
जी सलाम।
आह शुक्र है मेरे मालिक, या अल्लाह तेरा शुक्र है।
बैठे बैठे ना, आप लोग खड़े क्यों हो गए? मामा इधर से आ जाओ, बैठे मामा।
आप कहाँ थे इतने साल? मैंने आपको ढूंढने के लिए पूरा शिराज छान मारा था।
हम तेहरान में रह रहे हैं शाहिन साहिबा, उसी साल से जिस साल हाजी अली अकबर का इंतकाल हुआ था हम भी तेहरान चले गए थे।
जब आप लोग नहीं मिले तो मैं समझ गई थी कि आपने शिराज छोड़ दिया। आपको यहाँ का पता कैसे मिला?
आपके पुराने घर गए थे जिस जगह आप यतीम खाना है, हमने वहां से आपका पता लिया।
बेटा मजीद, अफ्तार के लिए रोटियां ले आओ।
लाता हूँ माँ, लेकिन अभी बहुत टाइम है।
टाइम तो है बेटा, लेकिन होटल पे बहुत रश हो जाएगा।
अच्छा जाता हूँ, माफ कीजिएगा मैं भी आता हूँ।
जी जरूर।
मैंने खुद उस साल आपको बहुत ढूंढा, आप कहीं नहीं मिले। खुदा का शुक्र है मेरे मरने से पहले आप लोग आ गए।
मुझे आखिर क्यों तलाश कर रही थी आप?
आपसे अपने गुनाह माफ करवा लूंगी। आपको मैंने बहुत तकलीफें दी, बिलखसूस आगा रजा को।
अगर आप इस घर को वक्फ करना चाहती थी और अगर हाजी साहब की वसीयत पे अमल करना चाहती थी तो मेरे सर पे क्यों मुसीबत खड़ी की आपने?
ये किस्सा बहुत तवील है, मैं बताती हूँ आपको आगा रजा, लेकिन पहले आप मुझे माफ कर दें ताकि मेरे गुनाहों का कफारा हो जाए।
तो आपने मुझे क्यों मजबूर किया कि मैं अपने दोस्त की अमानत में खयानत करूँ? मुझे आपने परेशान कर दिया शाहिन बीबी।
वो मुसीबत जो मेरी वजह से आपके सर पे आई है, उससे भी बड़ी कयामत मेरे गुनाहों की वजह से मेरे सर पे आई है। मैं वसीयत के मुताबिक वो घर किसी को नहीं देना चाहती थी। आपसे वसीयत लेने के बाद मैंने बहुत सोचा कि ये वसीयत मैं जला दूं। मैं हाजी अली अकबर से बहुत नाराज थी, उसके मरने के बाद भी मैं उसकी कब्र पे यही गिला करती थी कि तुमने ये वसीयत क्यों लिखी। आखिर 2-3 महीने बाद मैंने पूरी तैयारी कर ली थी इस घर को बेचने के लिए, लेकिन अचानक मेरी आंखों ने मुझे धोखा देना शुरू कर दिया और मेरी बिनाई कमजोर होती चली गई। रोज परोस मुझे आंखों से कम नजर आने लगा, फिर तैरान गई। बहुत पैसा खर्च हो रहा था मगर कोई फायदा नहीं था। मेरी ये बीमारी किसी डॉक्टर की समझ में नहीं आ रही थी। आखिर सबने यही कहा कि अजीब है, बहुत अजीब है। अजीब तो बहुत था। बाद में हिसाब लगाया तो पता चला कि पैसा बहुत खर्च कर दिया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ और आखिरकार मेरी आंखें चली गई। लेकिन किसी की समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों हुआ। कोई दवा काम नहीं आई। सिर्फ इस बात का गम था कि हमने बेफायदा इतना पैसा खर्च कर दिया। लेकिन एक बात की खुशी थी कि कम से कम हमने वो घर उन यतीम बच्चों के हवाले कर दिया। मेरे भी बच्चे थे, मैंने भी अपनी औलाद के लिए बहुत कुछ सोचा था। मैं इसी मजीद को बाहर पढ़ने के लिए भेजना चाहती थी। अभी घर को बेचे हुए 2 महीने भी पूरे नहीं हुए थे कि फातिमा बीमार पड़ गई। फातिमा मेरी बेटी, याद है आपको?
हाँ याद है मुझे।
मेरी आंखों की रोशनी चली गई थी। फातिमा रोज परोस गिरती चली जा रही थी। हर डॉक्टर को दिखाया, कोई डॉक्टर नहीं छोड़ा। शहर के हर बड़े डॉक्टर को दिखाया हमने, लेकिन कहीं से कोई फायदा नहीं हो रहा था। फातिमा की बीमारी किसी डॉक्टर की समझ में नहीं आ रही थी, कोई समझ नहीं पा रहा था। मेरी बच्ची मेरे हाथों से निकलती जा रही थी। हर कोई यही कह रहा था कि अजीब है, बहुत अजीब। एक दिन मैंने आपको ख्वाब में देखा था हाजी रजा। आपने ख्वाब में आकर मुझसे कहा, तुमने इस घर के लिए बहुत कुछ खो दिया। जितने पैसे तुम्हें इस घर से मिले हैं शाहीन साहिबा, वो सारे तुमने इलाज मुआलजे में और बच्चों की बीमारी पर सारा खर्च कर दिया। फिर हम लोगों ने पैसों का हिसाब लगाया तो पता चला कि आप सही कह रहे थे कि इस घर को बेच के जो भी रकम मिली थी वो सारी फातिमा के दवा दारू में लग गई। मैं बहुत डर गई थी और इसी रात मैंने नियत कर ली थी कि मैं दोबारा इस घर को खरीदूंगी और हाजी अली अकबर के नाम पे दे दूंगी। शायद आपको इस बात का यकीन नहीं आएगा, जिस रात मैंने नियत की थी, सिर्फ नियत करने से मेरी बेटी फातिमा की तबीयत दिन ब दिन संभल रही थी। मेरी बच्ची तंदुरुस्त हो रही थी और एक ही हफ्ते में वो सेहत याब होके बिस्तर से खड़ी हो गई। डॉक्टर उसको देख के यही कह रहे थे कि ये एक मौजजा है। मेरे लिए ये कोई मौजजा नहीं था। फिर मैंने वो घर खरीदा और हाजी अली अकबर की वसीयत के मुताबिक अमल किया। जिन पैसों से मैंने वो घर खरीदा था वो पैसा मुझे खुदा ने दिया और मैंने खुदा की राह पे ही खर्च कर दिया। वल्लाह खुदा का शुक्र है, मेरे बच्चे नेक और सालेह हैं और बहुत खुश हैं।
फातिमा बेटी किधर है?
तेहरान में पढ़ रही है, वहां दिल लगा के पढ़ रही है और हर साल अव्वल आती है। बाद में वो भी आपको तलाश करने निकली थी लेकिन वो जिस दरवाजे पे भी गई उससे बंद मिला। मेरी ये दुआ है कि खुदा आपको भी माफ फरमाए क्योंकि आप लोगों ने कभी किसी को कोई तकलीफ नहीं दी। लेकिन मैं इस दुनिया से डरती हूँ। खुदा ने आपको मेरे पास भेजा है, अब आप मुझे माफ कर दें। ताकि मैं सुकून से मर तो सकूं।
शाहिन साहिबा, क्या मसूद की माँ की कोई खबर है आपको?
कैसी खबर?
कि वो कहाँ है। हो सकता है कि वो भी हमें आपकी तरह तलाश कर रही हो। आखिरकार वो मसूद की माँ है।
मसूद की माँ को फौत हुए भी कई साल हो गए।
अच्छा तो मरते वक्त क्या हालत थी उसकी? तौबा कर ली थी, नशा छोड़ दिया था, क्या सही हो गई थी?
मैंने उसे नहीं देखा था, किसी ने भी उसे नहीं देखा था, क्योंकि उसने खुद को जेल में मार लिया था।
जेल में? क्या दोबारा जेल हो गई थी उसको?
दोबारा नहीं, उसी वक्त जब उसके शौहर को सजाए मौत हुई थी तो उसे दोबारा जेल भेज दिया गया था, इससे पहले कि वो आजाद होती। उसने जेल के अंदर अपने आप को एक रात खत्म कर लिया। हाजी अली अकबर की वफात के 6 महीने बाद।
लेकिन जब तुम मेरी दुकान पे आई थी तो तुमने कहा था वो आजाद हो गई है, और वो कई दफा हाजी अली अकबर के पास आ चुकी है पैसे लेने के लिए, हत्ता कि जब तुम दुकान पे वसीयतनामा लेने के लिए आई थी तो तुम उसको साथ लेके आई थी, याद है?
हाँ याद है, वो सब झूठ था हाजी रजा, मैं सिर्फ आपको ब्लैकमेल कर रही थी। उस दिन जो औरत मेरे साथ थी वो एक नशेई और लालची औरत थी, मैंने ही उससे पैसे दिए थे ताकि वो मेरे साथ आए और आपको डराए। मैंने आपके साथ बहुत बुरा किया है हाजी रजा, आप हाजी अली अकबर के बहुत अच्छे दोस्त थे, आपको मैंने बहुत तकलीफें दी हैं हाजी रजा, आपको खुदा का वास्ता आप मेरे गुनाहों को माफ कर दें। खुदा के वास्ते एक दफा मेरी तरफ देख लिया हाजी रजा,
रोटी आ गई माँ।
अंदर नहीं आओ मजीद, अभी चले जाओ यहाँ से।
लेकिन हुआ क्या?
कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, अभी तुम चले जाओ अभी यहाँ से, जब तक मैं ना बुलाऊं अंदर मत आना। अगर ऐसा मेरे गुनाह बख्श दे, खुदा का वास्ता बोलिए। नरगिस साहिबा मेरी मदद कीजिए, अपने शौहर से कहें मेरे गुनाह बख्श दे, मुझ पे रहम करें, आपको इतने सालों के बाद खुदा ने यहाँ पे इसलिए भेजा कि आप मेरे गुनाहों को माफ कर दें, माफ कर दे मुझे, माफ कर दे मुझे।
खड़ी हो जाओ,
नहीं, जब तक आप मुझे हाजी साहब से माफ नहीं करवा देंगे मैं यहाँ से नहीं उठूंगी। आप इनको बोले कि ये मुझे माफ कर दे अल्लाह के वास्ते, आप इनसे बोले कि ये मुझे माफ कर दे।
कैसे माफ कर दूं मैं आपको? मेरी जिंदगी तबाह बर्बाद कर दी, मेरी आखिरत स्याह कर दी, एक अरसे से मेरी रूह बेचैन है और आप कहती हो मैं माफ कर दूं? नहीं, नहीं माफ करूंगा, नहीं माफ करूंगा शाहिन बीबी, नहीं नहीं माफ करूंगा मैं।
रजा,
नहीं नहीं माफ करूंगा मैं इसे नरगिस, नहीं माफ करूंगा, तुम कहोगी फिर भी नहीं, कभी नहीं।
अच्छा आप रोई नहीं, आप रोई नहीं शाहिन साहिबा।
हाजी के लिए अकबर ने वसीयत में इस घर को वक्फ करने के अलावा कुछ और भी लिखा था या नहीं?
यानी क्या?
नमाजें जो सकल हुई जो उसने नहीं पढ़ी, और वो रोजे जो उसने नहीं रखे उसका कुफारा अदा किया तुमने। बोलो शाहीन बेगम, उस वसीयत में कुछ और ऐसा था जिस पे हमने अमल नहीं किया?
हाँ, हाँ था उसमें, लेकिन उसका ना पूछिए क्योंकि अब उस पे अमल नहीं कर सकते हम। अब जबकि मैं घर को भी वक्फ कर चुकी हूँ, अब उस पे अमल करने का वक्त गुजर चुका है। अब इसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं पता हाजी साहब।
बोलो बीबी बोलो, हाजी अली अकबर ने अपनी वसीयत में और क्या क्या लिखा था?
अब क्या करेंगे आप जान के हाजी साहब, क्योंकि अब कुछ करने का वक्त नहीं है।
तुम्हारा इन बातों से कोई मतलब नहीं, बताओ।
अच्छा अच्छा बताती हूँ। वो हमारे घर में रहते थे, बहुत अच्छे मियाँ बीवी थे, बहुत अच्छे लोग थे। नई नई शादी हुई थी, उस लड़के का नाम कासिम था और उसकी बीवी का नाम महालका था। हाजी साहब के इंतकाल से पहले एक गाड़ी ने उसे टक्कर मारी थी, जिसकी वजह से वो वहीं मर गया था। हाजी अली अकबर के इंतकाल के बाद मैंने वसीयत आपसे ली और जब उसे खोला और उस वसीयत में लिखा था कि महालका इस घर में जब तक चाहे रह सकती है, ये उसका हक है और वजारत औकाफ भी उसे नहीं निकालेगी। जब तक चाहे वो इस घर में रह सकती है उसे कोई नहीं निकालेगा, और वो हमेशा भी रह सकती है, और वही इदारा यानी औकाफ उसे हर माह पैसे भी देगा।
यानी घर देते वक्त उसने शर्तें रखी थी?
हाँ।
तुमने महलाका के साथ क्या किया?
लेकिन जब मैंने घर बेचने का इरादा किया तो उसे निकाल दिया था। मैंने उसको थोड़े से पैसे दिए और उससे कहा कि अब तुम जाओ। वो बेचारी जिसको पता ही नहीं था कि इस घर पे उसका क्या हक है, वो समझी कि जो पैसे मैंने उससे दिए हैं वो बहुत ज्यादा हैं। उसने दुआ दी और चली गई।
कहाँ गई वो?
कोई नहीं था उसका सिवाय एक बहन के, जो बहुत दूर एक गांव में रहती थी। वो बेचारी भी बहुत मजलूम और गरीब थी। उस बेचारी के भी 5 बच्चे थे और साथ में एक बीमार शौहर था जो घर का खर्च नहीं चला पा रहा था।
घर को वक्फ करने के बाद तुमने उसको तलाश किया?
जी हाँ, हाँ किया, लेकिन
लेकिन क्या?
ना पूछिए हाजी रजा, क्योंकि अब कुछ भी नहीं हो सकता।
एक बात गौर से सुन लो तुम, अगर तुम मुझे सारी बातें सही सही बता दोगी तो शायद मैं तुम्हें माफ कर दूंगा, लेकिन अगर तुमने कोई भी बात मुझसे छुपाई या मुझसे झूठ बोला तो मौला अली की कसम कभी माफ नहीं करूंगा मैं।
हाँ उसी वक्त जब फातिमा की हालत बेहतर होने लगी तो मैं महलका को ढूंढने के लिए गई थी, लेकिन मुझे पता चला कि वो 1 साल पहले इस दुनिया से जा चुकी थी। वो अब इस दुनिया में नहीं है।
कैसे, किस तरह मरी थी वो?
मरियम ने जो कि उसकी बहन, उसने बताया कि वो मर गई है। वो अपने बच्चे की पैदाइश की वजह से मरी। महालिका उम्मीद से थी, लेकिन मुझे पता नहीं था कि जिस वक्त उसको मैंने घर से निकाला था तो उसने भी मुझे कुछ नहीं बताया था, कुछ नहीं बताया। शायद उसको भी उस वक्त कुछ नहीं पता था।
बच्चे का क्या हुआ? महालिका का बच्चा अभी तक जिंदा है क्या?
हाँ, लेकिन मरियम ने बताया कि गुम हो गया था। मैंने बहुत तलाश किया लेकिन वो महालिका का बच्चा नहीं मिला। उस बच्चे का कहीं पता नहीं चला।
किस तरह गुम हुआ?
कोई भी इस बारे में सही बात नहीं जानता। बस इतना पता है कि घर का दरवाजा खुला था और वो बाहर गया था, और फिर उसका कुछ पता नहीं चला। लेकिन मुझे कभी भी यकीन नहीं आया कि एक छोटे से गांव में एक बच्चा इस तरह भी गुम हो सकता है कि उसका बाद में कोई पता ही ना चले।
यानी झूठ बोलते हैं वो?
मरियम एक अच्छी औरत है, वो कभी भी झूठ नहीं बोलेगी। लेकिन उसका शौहर बहुत तेज था। एक बार मैं उससे मिली थी, मुझे तो शक्ल से बहुत जालिम लग रहा था। मरियम बहुत सब्र वाली थी, वो चुपचाप उसके जुल्म सहती थी। मैं सब कुछ देखते हुए भी उसके लिए कुछ नहीं कर सकती थी क्योंकि मैं बहुत मजबूर थी। मैं सिर्फ रो सकती थी, मैं पशिमान थी।
क्या नाम बताया तुमने? गांव का पूछ रहा हूं मैं।
कलात।
हेलो मसूद जान।
हेलो सलाम हामिद।
वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है भाई, कैसे हो?
एक बहुत अच्छा रास्ता तलाश किया है फरीदा को बाहर ले जाने के लिए।
बहुत जबरदस्त, कहाँ ले जाने का इरादा है?
मैं उसे लेबोरेटरी में लेकर जाऊंगा।
बहुत अच्छा बहाना है। कौन सी लेबोरेटरी है?
कोई सी भी।
अच्छी बात है। अच्छा मैं शाहीन को फोन करके बता देता हूँ कि वो कल के काम की प्लानिंग कर ले, फिर मैं उसको बता दूंगा कि तुम उसको कौन सी लेबोरेटरी लेकर जा रहे हो।
हामिद, कल का ठीक है या किसी और वक्त ये काम कर लेते हैं?
क्यों अच्छे काम के लिए देर कर रहे हो मसूद जान?
जितनी जल्दी हो सके तुम्हें इस बच्चे के शर से अपनी गर्दन बचा लेनी चाहिए। ठीक है,
खुदा हाफिज।
खुदा हाफिज।
वाकई बहुत बड़ा और बहुत करीम है। मुझे कहां से कहां लेकर आ गया, कितनी बेइज्जती से कितनी इज्जत की जिंदगी अता फरमाई। खुदाया मैं तेरी शुक्रगुजार हूं। खुदाया तू मेरी हिफाजत करना, मेरे मददगार रहना, मुझे अपनी पनाह में रखना, बच्चे को भी शौहर को भी। खुदाया कुछ ऐसा कर कि मसूद हमेशा ऐसा ही रहे और मुझे और मेरे बच्चे को अपने दिल से ना निकाले। खुदाया मैं तेरी शुक्रगुजार हूं, तू मेरी हिफाजत फरमा हमेशा हमेशा के लिए। आमीन।
सलाम।
सलाम, इतनी जल्दी आ गए?
मैंने बुरा किया ना?
नहीं, अच्छा किया, थक तो नहीं गए आप?
शुक्रिया। कोई चीज तो नहीं चाहिए इफ्तार के लिए, बाहर से ला दूं?
नहीं, सब मौजूद है घर पे।
बहुत अच्छा, तो फिर मैं थोड़ी देर नींद कर लूं, इफ्तार के वक्त उठा देना।
सही है।
Thank you.
वालेकुम अस्सलाम शाहीन, कैसे हो?
मैं ठीक हूँ, क्या खबर है?
अच्छी खबरें हैं, एक काम लाया हूँ मैं तुम्हारे मतलब।
काम क्या है वो बोलो।
मेरा एक दोस्त है, वो मेरे बहुत करीब है, उसकी बीवी का मसला है, वो उम्मीद से है, वो इस बच्चे की आड़ में उसको ब्लैकमेल करके तंग कर रही है, हर दफा वो उससे पैसों का तकाजा कर रही है। काम यह है कि
छोड़ो ये सब बातें, उस औरत को ठिकाने लगाने हैं।
हाँ, लेकिन उसको नहीं, बच्चे को। मैं उस बच्चे की बात कर रहा हूँ जो उसके पेट में।
हमिद जान, अगर सिर्फ उस बच्चे को मारने का मसला है तो उस बच्चे को डॉक्टर के पास ले जाकर खत्म करवाओ।
डॉक्टर के लिए वो औरत कभी भी राजी नहीं होगी, मेरा मतलब है उसे इस तरह मारो कि सिर्फ बच्चा मरे, माँ नहीं। काम समझ में आया तुम्हें?
बहुत अच्छी तरह। काम तो मैं बिल्कुल करूँगा, लेकिन मैं तुम्हें इस बात की गारंटी बिल्कुल नहीं दूंगा कि वो औरत जख्मी ना हो। इतना बड़ा काम है, थोड़ा बहुत जख्मी तो होगी।
चलो ठीक है, उस औरत को बस जख्म लगने चाहिए, वो मरनी नहीं चाहिए, जाकर हॉस्पिटल के।
बस इतनी सी बात की उस औरत को बचाना है ना?
हाँ
हाँ, यानी क्या, अगर उस बच्चे के चक्कर में उसकी माँ भी मर गई तो?
फिर तो मजबूरी हुई ना।
लेकिन मैं फिर भी कोशिश करूंगा उस औरत को बचाने की। पैसे पता है ना?
कितने दूं?
30 मिलियन।
30 मिलियन?
नहीं तो क्या, 30 रियाल?
शाहीन साहब, 30 मिलियन बहुत ज्यादा लगते हैं मेरे ख्याल।
इतना नहीं कहो हामिद, 30 मिलियन लूंगा वरना काम नहीं होगा।
ठीक है, लेकिन एक शर्त है मेरी।
क्या शर्त है?
तुमने उस औरत के शौहर को कभी नहीं देखा है, लेकिन अगर कभी वो तुम्हें मिल जाए तो तुम उससे कहना कि तुमने उस काम के लिए 60 मिलियन लिया।
अच्छा, तो उसको धोखा देना चाहते हो?
मेरे ख्याल से ये धोखा नहीं है, क्योंकि मैं भी तो इस काम के लिए इतना बड़ा खतरा मोल ले रहा हूँ।
तुम तो कह रहे थे कि वो दोस्त है मेरा, और फिर भी उसको काट रहे हो?
हाँ, अभी भी मेरा दोस्त है वो। मैं हमेशा दोस्ती और कारोबार में फर्क रखता हूँ। मैं अपने उस दोस्त के कर्जों तले दबा हुआ हूँ, क्या करूँ मैं, मजबूरी है अब।
ये बात सही नहीं है कि सारा काम मैं करूँ और पैसे तुम लेकर जाओ।
तुम ये मत भूलो कि ये सारी प्लानिंग मेरी है और मैंने तुम्हें काम दिया। मैं तुम्हें तुम्हारे काम के पैसे दे रहा हूँ, और ये पैसे इस काम के लिए कम नहीं है। अब तुम एक ऐसा रोड देखो जहाँ लेबोरेटरी हो।
लेकिन लेबोरेटरी क्यों?
क्योंकि तय ये हुआ है कि बच्चे के चेकअप के लिए उसको लेबोरेटरी की तरफ लेकर आएगा। तुम सिर्फ एक लेबोरेटरी ढूंढो, वो खुद बाकी काम संभाल लेगा।
अगर प्लानिंग में कोई गलती हो गई और मैं पकड़ा गया तो?
मसूद एक बाइज्जत आदमी है, वो एक ऐसा खानदान है जिसकी यह माशरा बहुत इज्जत करता है। अगर तुम्हें काम में कोई नोकझोंक हो जाती है, या तुम कुछ और गलत कर बैठते हो, या पुलिस तुम्हें गिरफ्तार कर लेती है, तो तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, हम तुम्हारी मदद करेंगे। बस तुम अब इस काम को अंजाम देने की सोचो।
ठीक है, मैं जाके तैयारी शुरू करता हूं।
نمانی وطنم